ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासवि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे एक महान आचार्य श्रीपद रामानुजाचार्य के बारे में। तो रिसेंटली दो दिन पहले दो महान आचार्यों का तिरुभाव था। एक थे श्रीपद रामानुजाचार्य और दूसरे थे श्रीपद मध्वाचार्य। शायद कुछ लोग उनसे परिचित नहीं होंगे। तो श्रीपद रामानुजाचार्य, जैसे कि भगवान ने भगवद गीता में चौथे अध्याय में जो भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, ऐसे नहीं है कि मैं अभी अभी तुम्हें दे रहा हूं। ये ज्ञान मैंने विवस्वान सूर्य देवता को दिया था और धीरे धीरे चलते हुए एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयो विदो सकालेन महता योगो नष्ट परंतपः। कि ये जो भगवत ज्ञान है वो व्यक्ति को प्राप्त करना होता है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। इसी कारण से भगवान ने अपने आप को जानने के लिए चार अधिकृत परंपराएं नियुक्त की हैं। यदि कोई व्यक्ति इन चार अधिकृत परंपराओं में है और वहां भक्तों के अनुगत होकर भगवत भक्ति का अभ्यास करता है और उस संप्रदाय में प्राप्त हुआ जो मंत्र है उसका उच्चारण करता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान ने ये जो चार परंपराएं हैं वो प्रदान की हैं। तो जो इस्कॉन है वो एक परंपरा में है। कौन सी परंपरा है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो ये जो इस्कॉन आंदोलन है ये ब्रह्मा जी से शुरू होने वाली जो परंपरा है। भगवान ने अपने बांसुरी के द्वारा ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। श्रीमद् भागवतम में सर्वप्रथम वर्णन आता है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में, जिनको आदि कवि कहते हैं, ब्रह्मा जी का और एक नाम है, उनको ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और उनसे आगे ये परंपरा बढ़ती है और श्रील प्रभुपाद तक हम ये नॉलेज प्राप्त करते हैं। और दूसरी जो परंपरा है वो है लक्ष्मी के द्वारा शुरू होती है, जिसको श्री संप्रदाय कहते हैं। कौन सा संप्रदाय? श्री। श्री का मतलब ये लक्ष्मी। तो भगवान के द्वारा लक्ष्मी को ज्ञान प्रदान किया जाता है और लक्ष्मी देवी तो इस ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रमुख एक आचार्य आगे चल के हुए हैं, जिनका नाम था श्रीपद मध्वाचार्य। और ये जो दूसरा संप्रदाय है जहां भगवान लक्ष्मी को ये ज्ञान प्रदान करते हैं और लक्ष्मी के आगे फिर एक महान आचार्य प्रकट होते हैं अराउंड 900 साल पहले, जिनका नाम था श्रीपाद रामानुजाचार्य। और तीसरा जो संप्रदाय है, संप्रदाय का मतलब है कि सम्यक रूप से जो भगवान को जानने का ज्ञान आगे प्रदान करता है वो संप्रदाय है, पूर्ण रूप से अपने पास कुछ नहीं रखता है। तो ये संप्रदाय एक चयन है, एक परंपरा है कृष्ण से चली हुई गुरु और शिष्य की, जो आगे भगवत ज्ञान को दूसरों को देते जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो श्रीपद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के महान आचार्य हैं, और तीसरा संप्रदाय है शिवजी से शुरू होता है रुद्र संप्रदाय, जिनके महान आचार्य हुए विष्णु स्वामी। और तीसरा संप्रदाय है जो ब्रह्मा के चार पुत्र हैं चतुष कुमार, जिन्होंने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया और जिनके आगे चलकर एक महान आचार्य हुए उस संप्रदाय के, जिनका नाम था निम्बार्काचार्य। तो जनरली आप इन चारों संप्रदायों को देखेंगे, चार संप्रदायों के आचार्यों को देखेंगे तो एक विशेषता है, जैसे कि पद्म पुराण में वर्णन आता है एक विशेष लीला का, जहां नारद जब ट्रैवल कर रहे थे, नारद का काम क्या है, नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे, नारद मुनि का कुछ और बिजनेस नहीं है, वो उठते हैं दिन हो या रात्र हो, की शयने की भोजने की वा जागरने, उनके लिए क्या सोना क्या खाना क्या पीना क्या चलना क्या घूमना, सदैव वो कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं अपने बिना पर, और वो बिना भगवान ने उनको दी हुई है, विशेष बिना है। तो जब ऐसे नारद भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा, बिल्कुल एक युवती थी अत्यधिक सुंदर, और वो अकेले खड़े नहीं थी वहां, नारद ने देखा कि उसके साथ बहुत अधिक और भी स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के हाथ में चामर है, मोर पंख है, सेवा करने के अलग अलग उपकरण है, और वो सारी स्त्रियां उस जो सबसे बीच में खड़ी है युवती उसकी सेवा कर रहे हैं, चामर डुला रहे हैं, लेकिन वो जो सबसे बीच में खड़ी हुई युवती है वो अशांत है, बेचैन है, और वो आगे पीछे चल रही है, और उसके पास वो देखती है कि दो पुरुष सोए हुए हैं, उनको जाकर जगाती है, उठो उठो, वो सोए हुए कहां उठेंगे। हाँ, तो नारद ने देखा ये क्या हो रहा है, तो नारद जब जाते उस युवती के पास वो पूछते हैं कि हे युवती बताओ आप इतनी बेचैन क्यों हो, तुम इतनी सुंदर हो, अत्यधिक बेचैन लगती हो, और इतनी सारी स्त्रियां आपकी सेवा कर रही हैं, फिर भी आपकी ऐसी दशा ऐसी अवस्था क्यों है। तो वो कहती है कि मेरा नाम भक्ति है, भक्ति देवी है, क्या है, साक्षात भक्ति देवी, बेचैन हो रही है, और ये घटना ब्रज की है, वृंदावन की है। तो वहां नारद जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी आपको बहुत सुंदर युवती नौजवान एक प्रकार से दिख रही हो, लेकिन मुझे एक दुख है कि मेरे जो दो पुत्र हैं, जो नीचे दो पुरुष सो रहे थे अचेतन अवस्था में थे, ये जो दो मेरे पुत्र हैं, ये वास्तव में वृद्ध हो गए हैं और मैं उनको जगाने का प्रयास कर रही हूं, वो उठ नहीं रहे हैं। तो नारद पूछते आपका परिचय मुझे ठीक ठीक से बताओ। हम बोलते रहते ना भक्ति देवी की जय, कभी कभी सुनते भक्त लोग, हाँ भक्ति लता, हम सब भक्ति चाहते हैं। तो भक्ति देवी परेशान थी, तो भक्ति कहती है कि मेरा है नारदा, मेरा जो जन्म है वो द्रविड़ देश में हुआ था। कहाँ हुआ था, द्रविड़ देश, द्रविड़ देश मीन्स दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, मैंने वहां जन्म ग्रहण किया, और मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई जब मैं कर्नाटका में आई, भक्त लोग कई बार कहते हैं कि जहां नाटक किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्नाटक। ऐसा तो नहीं है। तो कर्नाटक में मैं वही, और जब मैंने महाराष्ट्र में प्रवेश किया तो मैं बहुत फली फूली, बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त किया। सबसे अधिक आनंदित थी मैं महाराष्ट्र में। लेकिन प्रभुपाद ने भी बोला था, प्रभुपाद ने कहा महाराष्ट्र में प्रचार करना इजी है और सब लोग निरोडीज हैं, उनको केवल हमारे मूवमेंट की ओर क्या करना है, खींच लेना है। तो इसलिए आप देखो महाराष्ट्र में बहुत भक्त बन रहे हैं। तो भक्ति देवी ने कहा कि लेकिन मैंने जब गुजरात में प्रवेश किया तो ऐसे ऐसे लोगों ने मेरा आश्रय ग्रहण किया जो भगवत भक्ति तो कर रहे थे लेकिन कैसा दिखावे का भगवत भजन, पाखंडी। ऐसे लोगों ने मेरा आश्रय लिया जिसके कारण मैं जर्जर हो गई, वृद्ध हो गई, और मेरे लिए चलना भी अत्यधिक कष्टदायक हो उठा। कैसे तो मैं गिरती हुई, कैसे तो वृंदावन पहुंची, और फिर से मैंने अपना शक्ति सामर्थ्य बल प्राप्त किया है। तो भक्ति देवी का जन्म कहा हुआ है, कहा हुआ है द्रविड़ देश, दक्षिण भारत। तो उसी प्रकार से वास्तव में ये जो चार संप्रदाय के आचार्य हैं, इनका जन्म भी कहा हुआ है दक्षिण भारत, मूल रूप से। क्योंकि भगवत भक्ति का जन्म मूल, शास्त्र कहते हैं भक्ति जन्म मूल है साधु संघ। भक्ति कहा जन्म लेती है, कहा, जहां भगवान के भक्तों का संघ आपको लाभ प्राप्त होता है। इसी कारण से भागवतम कहता है भक्ति स्तु भगवत भक्ता संगेन परिचायते। भक्ति करने की किसी की बहुत दृढ़ मनोभिलाषा है, कामना है, तीव्र इच्छा है, तो उस व्यक्ति को अत्यधिक भगवान के उन्नत भक्तों का संग करना चाहिए। इसी कारण से कपिल देव अपनी माता देवहूति को कहते हैं सता प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति रुत्कर्ण रसायन कथा, कि सताम प्रसंगान, सताम का अर्थ है भक्त, प्रसंगान मीन्स भगवान की चर्चा, कि भक्तों के संग में आकर व्यक्ति को निरंतर मेरी चर्चा में भाग लेना चाहिए। मम वीर्य संविदो भवन्ति रुत्कर्ण रसायन कथा तद जोशनादाशो अपवर्ग वर्तमने भक्ति रति अनुक्रमशति, श्रद्धा भक्ति रति। वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से भगवान के उन्नत भक्तों के बीच में आता है और भगवान की जो शौर्यमय गाथाएं हैं, उनकी दिव्य कथाएं हैं, उनको केवल सुनने में अपने आप को लगाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर सर्वप्रथम एक चीज का उदय होगा, और वो क्या है, श्रद्धा। क्या चीज का उदय होगा, श्रद्धा। तो आगे आ सकते बिल्कुल, यहां बॉर्डर लाइन में आ जाइए। तो भक्तों के बीच में हम आते हैं तो सबसे पहले कोई चीज, किसी चीज में बदलाव हम में आता है तो हमारा जो फेथ है वो इंक्रीज होने लगता है, श्रद्धा। अब जितने भी भगवान के अलग अलग धरातल के भक्त हैं जिनका वर्णन किया गया है, उन्नत भक्त उसे कहा जाता है जिसका श्रद्धा का लेवल क्या है, अत्यधिक बड़ा है। कोई व्यक्ति नव दीक्षित है, मध्यम है, उच्च है, ये किस पर देखा जाता है, उसका श्रद्धा का लेवल क्या है, श्रद्धा अनुसरी शास्त्र कहते हैं। तो इसी कारण से जब भगवान के भक्तों के बीच में आते हैं और निरंतर हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान के जो उन्नत भक्त हैं उनका संग लाभ करें और उनके द्वारा भगवान के दिव्य चर्चाओं को क्या करें, सुने, जिसके द्वारा तीव्रता से हमारे हृदय में भगवत भक्ति का उदय होता है और श्रद्धा विकसित होती है और भगवान के प्रति अनुराग या आकर्षण हम महसूस करते हैं। इसी कारण से शास्त्र हमें बारंबार प्रेरित करते हैं। तो इसलिए जो भगवत भक्ति है उसका जो जन्म स्थान है वो भक्तों का संग है। इसी कारण से प्रभुपाद ने कहा कि मैंने ये जो मंदिर बनाया है, किसने उनको कहा, स्वामी जी जब प्रभुपाद पुणे आए थे तो जब मुंबई का मंदिर बना रहे थे जो में, तो उनको पूछा, स्वामी जी आप इतने बड़े बड़े मार्बल के मंदिर बना रहे हो, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, पहले से बहुत सारे मंदिर हैं, और मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। हाँ? लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि कोई हॉस्पिटल बना रहा हो तो कोई ये नहीं पूछता कि बहुत पहले से इतने हॉस्पिटल्स है, क्यों आप और हॉस्पिटल्स खोल रहे हो। लेकिन जैसे कोई भगवत सेवा मंदिर आदि की बात आती है तो लोगों को सहन नहीं होता। तो प्रभुपाद ने कहा इन मंदिर बनाने का एक में उद्देश्य है। बहुत सारे मंदिर भारत में हैं, लेकिन वो क्या है, वो सारे जो मंदिर हैं बेल रिंगिंग टेंपल्स। प्रभुपाद ने कहा वो कैसे टेंपल्स हैं, बेल रिंगिंग टेंपल्स, घंटी बजती रहती है उसमें, लेकिन क्या नहीं होता वहां, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लाउडली
राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो मंदिर तो हजारों है, जहां आप देखो लोग आते हैं आरतियों में जाते हैं, एक कैसे तो आरती उनको याद है, जय जगदीश हरे सब कुछ तेरा, आगे क्या है, चेकबुक मेरा। तो सारी आरतियां लोग गाएंगे, लेकिन जब आरती कंटिन्यू होती है तो केवल वो घंटियां बजाते रहते हैं, वहां भगवान का नाम नहीं है, भगवत कथा नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा अभी तो इतना हो गया है कलियुगा, कलियुगा में वृंदावन में भी जाएंगे तो वैसे ही आरती में लोग नहीं होते हैं और घंटियां बजाने वाले लोग नहीं होते, अभी तो इलेक्ट्रिक वो आ गए हैं, ड्रम्स अपने आप बजते हैं, घंटियां बजती हैं, पुजारी आता है मंदिर में एक बटन दबाता है तो स्वयं चलित वाद्य यंत्र बजने लगते हैं। हाँ, तो ये कलयुग का क्या कह सकते हैं, भयावह लक्षण है। प्रभुपाद ने कहा हम ऐसे टेंपल नहीं चाहते, टेंपल्स इसलिए बना रहा हो, इसकी एक में खासियत है कि लोग यहां आए और वो कृष्ण के बारे में सुने, क्या करें, कृष्ण के बारे में सुने। यदि ये नहीं हो रहा है, भगवान का गुणगान नहीं हो रहा है, भगवान की गुण उनकी महिमा को सुनने का मौका नहीं मिल रहा है तो वहां कृष्ण नहीं है। भगवान कहते मैं कहां हूं, नारद ने जब पूछा कि भगवान मैं घूमता रहता हूं, भ्रमण करता हूं, लोग पूछते हैं कि कृष्ण कहां रहते हैं, हाँ तो नारद ने कहा कि मैं कृष्ण को पूछता हूं, तो पूछा तो भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वः यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद मैं वहां निवास करता हूं जहां मेरे प्रेमी भक्त मेरे दिव्य गुणों का गान करते हैं। कृष्ण खींचे जाते हैं जहां जहां भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा है, जहां जहां कृष्ण के गुणों का वर्णन हो रहा है वहां कृष्ण दौड़ते हुए आते हैं। भगवान कहते मुझे कार ढूंढना है तो मैं वहां हूं। इसलिए कृष्ण कथा सुनने के लिए सबसे पहले कोई दौड़ता है तो वो कौन है, स्वयं भगवान। कौन, स्वयं भगवान। इस संसार में भी देखो कौन व्यक्ति ऐसा है यहां जो अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता है, कोई ऐसा, हम थोड़ा थोड़ा कार्य करते हैं लेकिन हम बड़ी बड़ी अपेक्षा रखते हैं कि क्या हो, मेरी इतनी प्रशंसा हो कि उसको सुनने के लिए मेरे पास दो कान काफी नहीं होने चाहिए, कितने कान होने चाहिए मेरे पास, हजारों हजारों कान होने चाहिए। तो हमें इतनी अपनी खुद की प्रशंसा, खुद की वाह वाह सुनने की इच्छा है, कृष्ण भी पर्सन है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है उन्होंने कहा, क्यों, उन्होंने मध्वाचार्य के संप्रदाय को स्वीकार किया था क्योंकि मध्वाचार्य के संप्रदाय में दो प्रमुख शिक्षाओं पर बल है, एक क्या है, मायावाद का खंडन और श्री मूर्ति भगवान के विग्रह की सेवा। इसमें बहुत कठोरता है उस संप्रदाय में कि कृष्ण परम भगवान कोई है, परम ब्रह्म कोई है, तो वो एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, पर्सन है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो परम भगवान है। तो इसी कारण से भगवान में भी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, और अपनी कथा सुनने के लिए कृष्ण सर्वप्रथम दौड़कर उपस्थित होते हैं। तो ऐसा यदि कोई व्यक्ति इन टेम्पल्स में आता है और भक्तों का संग, अभी कोई कहे कि भक्तों का संग करना चाहिए, अरे भक्तों का संग मतलब क्या, जाओ पूछो, उनके द्वारा सुनो और अपने जीवन में लागू करो, यही भक्तों का एसोसिएशन है। भक्तों के संग में आना, आकर कृष्ण के बारे में निरंतर सुनना। जैसे हमारा एकम हो जाता है तो हम माया के बारे में अत्यधिक सुनने के लिए हमारे कान ऊपर हो जाते हैं, और भक्ति में कई सारी बाधाएं हम महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने जीवन से शिक्षा प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से भगवत भक्तों का संग करना चाहिए, और किस प्रकार से प्रतिदिन व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनना चाहिए। आजकल तो ये फैशन बन गया है, साप्ताहिक भागवत सप्ताह, साल में एक ही बार हम तो भागवत सुनते हैं। लोग कहते कि हम भी भागवत सुनते हैं, सुनते नहीं, हम भागवत करते भी हैं, अरेंज भी करते हैं, लेकिन 7 दिन वो सुनेंगे, और उसमें भी वो इधर उधर घूमते भी हैं, थोड़ी बहुत कथा चली गई अंदर तो ठीक है, लेकिन वास्तव में भगवान के बारे में हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन हम भगवान के भक्तों के मुख से कृष्ण का गुणगान ना सुन पाए, रोज प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे ये जो महान आचार्य हैं चारों संप्रदाय के, जिनका जन्म वास्तव में दक्षिण भारत में होता है, और ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनका नाम क्या था, रामानुज आचार्य। आचार्य का मतलब है आचरति इति आचार्य, जो अपने आचरण से भगवत भक्ति की शिक्षा दूसरों को देता है और सिखाता भी है, उसको वास्तव में आचार्य कहा गया है। इसलिए पंचतत्व में अद्वैत आचार्य है। अद्वैत आचार्य का मतलब यह कि जो खुद अपने जीवन में भगवत भक्ति की शिक्षा को अंगीकार करते हैं और वो सिखाते हैं। तो ऐसे रामानुजाचार्य ये कोई सर्वसाधारण आचार्य नहीं थे, रामानुजाचार्य विशेष आचार्य थे, इनके नाम से ही हमें पता चलता है। भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए हर युग में भगवान अपना सर्वप्रथम विस्तार करते हैं। जैसे भगवान राम अवतरित हुए हैं तो उनके संग में लक्ष्मण हमेशा थे, जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं तो उनके संग में कौन थे, बलराम। तो भगवान कृष्ण के जो सर्वप्रथम सेवक हैं, जैसे अभी रिसेंटली ओबामा आए थे तो उनकी जो वाइफ है उसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट लेडी, है ना। तो उसी प्रकार से कृष्ण के फर्स्ट सर्वेंट कोई है तो वो कौन है, बलराम है। कौन है,
बलराम।
और वही बलराम राम के साथ लक्ष्मण के रूप में आते हैं, वही लक्ष्मण जब अपना विस्तार करते कृष्ण की सेवा के लिए तो अनंत शेष के रूप में, अनंत शेष का रूप धारण करते हैं, लंबा सा सर जिसके ऊपर भगवान क्या करते हैं, निद्रा शयन करते हैं। हमें सांप का नाम लेते हुए डर लगता है, आपको कहा जाए कि आज आपके बेडरूम में हमको सांप भेज रहे हैं जिसके ऊपर आपको सोना है, हाँ, लेकिन जब भगवान आराम से लेटे हुए हैं, और इतना ही नहीं, जो लक्ष्मी देवी हैं उनकी सेवा कर रही हैं, तो ऐसे भगवान की सर्वप्रथम सेवा करने के लिए अनंत शेष या लक्ष्मण अवतरित होते हैं और किस प्रकार से सेवा करते हैं, उनका बेड, उनकी अम्ब्रेला, भगवान के लिए जो भी वस्तु यूज हो रही है वो साक्षात बलराम है या अनंत शेष है, हर वस्तु जो कृष्ण की सेवा में लगी हुई है। तो इस प्रकार से वही अनंत शेष, जब वही बलराम या वही लक्ष्मण जब अपने एक विशेष सेवा कृष्ण के लिए करना चाहते हैं और आपने एक शक्ति प्रस्तुत करते हैं जिसको कहते हैं कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। कौन सी शक्ति बोलिए एक साथ? हाँ, कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। भगवान और ये सेवा भगवान को बहुत अच्छी लगती है। जैसे हमारे महाराज हैं सच्चिदानंद स्वामी, वो एक उनके टेम्पल में वो बता रहे थे कि जैसे ही वो संध्या का समय होता है वो अपने विग्रहों के लिए कृष्णा बुक पढ़कर सुनाते हैं रोज रात्रि में, और भगवान को बहुत अच्छा लगता है। अभी लोग भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, कभी उनको लड्डू नहीं खिलाएंगे, खुद खाएंगे, है ना? नाम के लिए लड्डू गोपाल वहां एक कोने में है, कुछ लेना देना नहीं है। और इवन भक्तों के जीवन में भी देखते हैं कि घर में अल्टर इसलिए रखा है क्योंकि भोग लगाकर खाना पड़ता है, इसलिए क्या रखा है हमने घर में, अल्टर रखा है। यदि ये नियम नहीं होता ना कि आपको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना है तो घर में क्या नहीं मिलता, अल्टर भी नहीं मिलता, भगवान की सेवा भी नहीं होती। तो यहां भगवान को दो चीजें अच्छी लगती हैं, एक सोने से पहले कोई व्यक्ति उनका गुणगान करे और सोकर उठने के बाद कोई उनका गुणगान करे। कृष्ण हमेशा चाहते हैं, आप दक्षिण भारत जाओगे तो हर टेम्पल में आपको ये मिलेगा, भगवान सोने से पहले उनकी शयन आरती होती है, इवन इस्कॉन के कई टेम्पल्स में है। और जैसे भगवान सुबह उठते हैं तो कई सारे भक्त उनके सामने नृत्य करते हैं, गाते हैं, उनके लिए स्तोत्र श्लोका राष्ट्रकम प्रेयर्स कीर्तन आदि करते हैं, कृष्ण आनंदित होते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की ये जो सेवा है उनका गुणगान करना जिह्वा के द्वारा, ये सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अधिक प्यूरिफाइंग, सबसे अधिक शुद्धि प्रदान करने वाला है। जब हम अपने जिह्वा से किसके बारे में बोलते रहते हैं, कृष्ण के बारे में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जोर देते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रिये सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति आधा। कि व्यक्ति तो इतना आलसी है कलयुग में, वो कुछ कर ही नहीं सकता कृष्ण की सेवा, अपनी सेवा नहीं कर रहा है, अपने वालों की सेवा नहीं कर रहा है। हाँ, उसको कितने सारे, सोचो घरों में कितने सारे हमें नौकर चाकर कितने लोग रखने पड़ते हैं, एक तो खुद की सेवा नहीं कर पाते और जिनकी सेवा करने के लिए हम बने हैं उनकी सेवा भी नहीं कर पाते। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के लोग अत्यधिक दुर्भाग्यशाली है। एक प्रकार से बच्चों को शांत करिए प्लीज या बाहर ले जाइए। तो कलयुग में ये अत्यंत दुर्भाग्यशाली है कि लोगों को इतना सरल मौका दिया है भगवान का गुणगान करने का, लेकिन फिर भी वो अपने जिह्वा से, जिह्वा के द्वारा नहीं करते, अपने जिह्वा के माध्यम से भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जिसके पास ये मनुष्य जीवन है उसे अपने जीव का सबसे अधिक उपयोग कृष्ण का गुणगान करने के लिए करना चाहिए। लोचनदास ठाकुर ने कहा यदि आप इस जिह्वा का इस्तेमाल भगवान का गुणगान, भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए नहीं करते हो तो मृत्यु के समय सबसे पहले किसी चीज को आग लगाई जाएगी तो आपका वो मुख है। इसलिए कहते हैं ना मुखाग्नि दे दो, क्या करो इस व्यक्ति को मुखाग्नि दे दो। प्लीज बच्चों को बाहर करें। वो कहते हैं कि क्या करो, इस व्यक्ति को मुखाग्नि दो। तो इसलिए लोचनदास ठाकुर कहते कि कृष्णा आप मुझे ये शक्ति दे दो, ये सामर्थ्य दे दो कि जब तक ये जीवा है तब तक आपका गुणगान करता रहो और ये जीवा के द्वारा आपके नामों का सदैव क्या करो उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए ये जो महान आचार्य हैं, ये इस संसार में अवतरित होते हैं, उनका क्या प्रयोजन है? ये जो अलग अलग आचार्य इस जगत में आते हैं, अवतरित होते हैं, उनका एकमेव प्रयोजन है कि जो भी ये इस संसार में बद्ध जीव है उसको कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रेरित करना, बस और कुछ नहीं। इसलिए श्रीपद रामानुजाचार्य जैसे प्रभुपाद के लिए हम कहते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। क्या कहते हैं? जब कृष्ण की कृपा एक मूर्ति का रूप धारण करती है तो वो श्रील प्रभुपाद है। उसी प्रकार से कृष्ण कथा वर्णन शक्ति जब मूर्तिमान रूप धारण करती है तो वो श्रीपद रामानुजाचार्य है। श्रीपद रामानुजाचार्य जैसा आचार्य नहीं हुआ जो जिन्होंने सर्वाधिक कृष्ण का गुणगान किया है। इसलिए ऐसे श्रीपद रामानुजाचार्य अवतरित होने से पहले ही उनके संप्रदाय के महान महान गुरुओं ने कहा कि इस संप्रदाय में एक ऐसा भक्त आएगा जो हम सबका उद्धार करेगा। इवन रामानुजाचार्य से पहले अलग अलग आचार्य हुए हैं, उनके पहले हुए थे यमुनाचार्य, उनके पहले हुए थे नाथ मुनि, उनके पहले हुए थे 12 अलवर डिवोटीज। तो इनमें नाथ मुनि ने कहा था कि एक भक्त आएगा रामानुजाचार्य जो इतना पावरफुल होगा कि हमारा भी उद्धार करेगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? स्वयं गुरुज कह रहे हैं। कौन? गुरु। वो कह रहे कि ऐसा क्वालिफाइड शिष्य आएगा जो हमारा उद्धार करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य को उद्धारक आचार्य कहा गया है, उद्धारक आचार्य। और वही भावना श्रील प्रभुपाद की है। जब ये रामानुजाचार्य और उस संप्रदाय में ये प्रमुख शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु ने हर संप्रदाय से दो दो शिक्षाएं ली और अपने इस आंदोलन में डाली प्रैक्टिस में। तो श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य का संप्रदाय है उनसे चैतन्य महाप्रभु ने दो प्रमुख शिक्षाएं ली। एक शिक्षा क्या है? अनन्य भक्ति। क्या है शिक्षा? कि भगवान की कैसे भक्ति करनी चाहिए? अरण्य भावना से। इवन भगवद गीता में कृष्ण भी बारंबार जोर देकर बोल रहे हैं अरण्य चेता सततम योमाम स्मरते नित्य शाह तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान 8वें अध्याय में अर्जुन को कहते कि अर्जुन मैं उस व्यक्ति के लिए सुलभ हूं। कौन से व्यक्ति के लिए अर्जुन पूछते हैं? कृष्ण कहते अनन्य चेता सततम। जो व्यक्ति अनन्य भावना से सतत मेरा स्मरण करता है उस व्यक्ति के लिए मैं क्या हूं? सुलभ हूं। कभी कभी हमें लगता है इतने समय से भगवान के मंदिर आ रहा हूं, आ रही हूं, हरि नाम का उच्चारण कर रहा हूं, थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, फिर भी क्यों भगवान के प्रति अनुराग नहीं है? क्यों भगवान के प्रति आकर्षण की भावना इस हृदय में नहीं है? क्यों ये जो हृदय है रेगिस्तान की तरह सूखा सूखा बंजर भूमि हो गया है? क्यों? क्योंकि उसमें अनन्य भावना नहीं है। हमारे हृदय में चाहे हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो कुछ पाने की अभिलाषा है, कुछ ना कुछ चाहते हैं। थोड़ी बहुत भगवान की सेवा कर ले तो उसके बदले में हम क्या रखते हैं? कुछ बहुत, एक तो हमारा नेम फेम ग्लोरीज या कुछ और कामना करते हैं। तो ऐसी जब कामना हृदय में होती है तो कभी भी हमारा हृदय भगवान की ओर आकृष्ट नहीं होता, वो एक दीवार के समान हमारे लिए बाधा बनती है। इसलिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मणि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। हे कृष्ण मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, मिश्र भगवत भजन नहीं। कैसे? केवल हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो असली प्रेम है। इस संसार में जो भी सो कॉल्ड प्रेम की भावना है आपसी संबंधों में, तो उनमें स्वार्थ छुपा हुआ है। चाहे हमारे जो भी संबंध है उसके बदले में हम कुछ चाहते हैं। आजकल के माता पिता अपने बच्चों से भी कुछ चाहते हैं, और हर संबंध के पीछे जब तक मेरी मनोभिलाषा मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तब तक आपके साथ मेरे अच्छे संबंध नहीं होंगे। लेकिन वास्तविक प्रेम क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं आश्लिष्वा पादरताम पिनस्तुमाम। वो कहते कि चाहे आप मुझे हे कृष्णा लात मारकर मुझे दूर भगा दो, आलिंगन न करके मेरे हृदय को तोड़ दो, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा छोड़ूंगा नहीं। ये है भक्त। इस प्रकार की भावना का उदय करना होगा। चाहे मेरा शरीर मेरा मन मेरी भौतिक परिस्थिति, क्योंकि इस संसार में ये चीजें कभी भी ठीक नहीं होंगी। कई बार व्यक्ति सोचता है मेरा शरीर ठीक होगा, मेरा घर ठीक होगा, मेरा बिजनेस ठीक होगा, मेरे परिवार के संबंध ठीक होंगे, समाज देश मोहल्ले के लोग सब कुछ ठीक होगा ना, तब मैं क्या करूंगा?
हरे कृष्णा
जोर से
हरे हरे,
हरे राम
राम राम हरे हरे।
ये मूर्खता है, ये सब चीजें कभी भी ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत का स्वभाव ही है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं दुखालय अशाश्वतम। अभी एक मूर्ख व्यक्ति ने भगवद गीता के एक श्लोक पर टीका कर दी, लिखा है इस श्लोक का अर्थ लिख दिया दुखालय अशाश्वत का। उसने टीका कर दी कि ये जो दुख है ना, भगवान ये बताना चाहते यहां कि ये जो दुख है वो अशाश्वत है। समझ में आ गया आपको? दुख क्या है? अशाश्वत है, जाने वाला है दुख जल्दी, और कौन से दिन आने वाले हैं? सुख। इस प्रकार से लोग भगवान के जो शब्द है उनको अपने हिसाब से तरोड़ मरोड़ते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ ठीक होगा तब मैं भगवान की कथा सुनूंगा, सब कुछ ठीक होगा तब सैटरडे प्रोग्राम जाऊंगा, सब कुछ ठीक होगा तब घर में हरे नाम का माला पर जप करूंगा। आप सब कुछ ठीक के चक्कर में आपके शरीर में झुर्रियां पड़ने लगेगी, दांत कम होने लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे, सफेद होने लगेंगे, फिर भी व्यक्ति सोचता है। क्या सोचता है? इतना होता है तभी भी वो सोचता है कि सब ठीक होगा तब मैं क्या करूंगा?
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो एक युवती थी, उसने एक बूढ़ी श्री को जाते हुए देखा, और वो बूढ़ी श्री आप गांव में देखते हैं, शहरों में तो नहीं देखा हमने, लेकिन जब धनुष बाण होता है ना ऐसे ऐसे पूरा यू टर्न लेता है, तो वैसे गांव में जब हमें वृद्धावस्था आती है तो हमारी कमर क्या हो जाती है? यू टर्न, झुककर नीचे देखना पड़ता है। आप आगे देखना चाहो तो भी नहीं देख सकते, ऊपर देखना चाहो तो भी नहीं देख सकते। तो ये बूढ़ी माता आगे जा रही थी, अरे नव युवती जिसको अपने यौवन का घमंड था, उसने कहा मजाक मजाक करते हुए उसने कहा ओ ओ ओ बूढ़ी, मतलब उन्होंने कहा हे माताजी आप नीचे झुककर क्या ढूंढ रही हो, क्या आपका गुम हो गया है, क्या आपने खो दिया है, बताओ बताओ। तो वृद्ध लेडी वृद्ध श्री क्या कह रही होगी, वो तो समझ गई कि ये जो युवती है अभी इसका शरीर बहुत सुंदर है, ये मेरा क्या उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है, और बोल रही है कि अभी वो बूढ़ा व्यक्ति यूटर्न लेता है तो नीचे देखता है, तो ये मजाक में कहती कि आप क्या ढूंढ रही हो, क्या आपने खो दिया है नीचे, तो कहती है मैं ढूंढ रही हूं अपनी युवा अवस्था को। किस चीज को? हाँ, मैं भी आपके जैसे क्या थे, युवा थी। हाँ, तुम वेट करो बस, टाइम आने वाला है, थोड़े सालों के बाद आपको भी क्या करना है, यूटर्न लेना है। तो वो यूटर्न लेने से पहले हमें यूटर्न लेना होगा, किसकी ओर? कृष्ण की ओर। अन्यथा इस संसार में आप बस एंड नहीं है, जितना मर्जी इंद्रियों का तर्पण करने के लिए हम तेज गति से दौड़ते रहेंगे इस संसार में, कभी भी इसका एंड नहीं है। तो इसलिए एक ना एक दिन यूटर्न देना होगा, और ऐसे यूटर्न कौन हमें करवाते, कौन करवाते हैं? भगवान के जो भक्त हैं। इसलिए भगवान के भक्तों की जो कृपा है वो सर्वोच्च है। इसलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जैसे जो भक्त हैं वो हमें सिखाते हैं कि भगवान की जो सेवा है बिना किसी हेतु के, बिना किसी अभिलाषा के हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से, जो रामानुजाचार्य का संप्रदाय है, उनमें से दो शिक्षा ली। सर्वप्रथम शिक्षा ली अनन्य भावना से भगवान की सेवा करना, इसमें कोई धोरा ही नहीं है। भगवान की प्राप्ति इससे बढ़कर और किसी चीज से असंभव है। कृष्ण क्यों वृंदावन को स्मरण करते हैं? कृष्ण क्यों गोपियों के द्वारा कंट्रोल्ड है? नंद महाराज, यशोदा, उनके वृंदावन के सखागण क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेम है, उनकी जो सेवा की भावना है, वो 100% अनन्य भावना से, वो भगवान की सेवा के बदले में कुछ और नहीं चाहते, केवल सेवा करना चाहते बस, और कोई अपेक्षा नहीं। और दूसरी शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने रामानुजाचार्य के संप्रदाय से ली, और वो क्या है? भक्त जन सेवा। क्या है? लाउडली, हाँ, भगवान के जो भक्त है उनकी सेवा करना। तो कोई कह सकता है भक्त तो मंदिर में ही होते हैं, कहाँ होते हैं? नहीं, भक्त तो हमेशा, कई बार लोग सोचते कि अरे कहाँ भक्तों की सेवा करेंगे, भक्त तो इजीली अवेलेबल नहीं है, भक्त तो हमेशा मंदिर में नहीं, आपके घर में भी क्या है? भक्त है। कौन है भक्त आपके घर में? तुलसी देवी। कौन? हाँ, भगवान की सर्वोत्कृष्ट शुद्ध भक्त। भगवान को इतने प्रिय है कि भगवान ने सोचा मेरे धाम का नाम क्या रखा जाए, तो ने वृंदावन रखा, क्योंकि वृंदा कहते उसे। तो मतलब, और देखा जाए हमारे घर में सबसे दुर्दशा किसी की है तो वो किसकी है? तुलसी देवी की। कैसे हम भक्त हैं? तुलसी की थोड़ी सी सेवा करने से कृष्ण उस व्यक्ति के ऋणी बन जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तुलसी दल मात्रेन जलश चुनुकेन वा विक्रीडेते सो आत्मानं भक्त्योभ्य भक्तवत्सला। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल थोड़ा सा तुलसी दल मुझे अर्पित करता है जल के साथ, वो व्यक्ति परमानेंटली मुझे खरीद लेता है। अब सोचो, कोई हमें भौतिक करेंसी की आवश्यकता नहीं है, रुपीस डॉलर्स आदि की आवश्यकता नहीं है कृष्ण को खरीदने के लिए। कृष्ण कैसे खरीदे जा सकते हैं? तुलसी यदि हम प्रीति पूर्वक अर्पित करते हैं, और चंदन के साथ अर्पित करें तो कृष्ण आपके हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम किसकी सेवा करनी पड़ेगी? तुलसी देवी की। इसलिए प्रभुपाद ने इस आंदोलन में सुबह उठते ही तुलसी की सेवा, तुलसी की पूजा आदि की, हमें शिक्षा प्रदान की है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरी प्रमुख शिक्षा है जो चैतन्य महाप्रभु ने इस रामानुजाचार्य के संप्रदाय से ली और इस संप्रदाय में लागू की, हाँ, भक्त जन सेवा। और यही तो हमारी कामना होनी चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवार जनमे जनमे हाय, यही अभिलाष। हमें कोई बहुत बड़ी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे बहुत फेमस बहुत बड़ा भक्त बनना है। कृष्ण के आंखों में नहीं होगा, कृष्ण को आप दिखाई भी नहीं देंगे। हाँ, कृष्ण देखते हैं, हाँ, किसे देखते हैं? गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासा अनुदास, होते हैं ना, अनु और अनियात, भगवान कहते गीता में। तो अनुदास भगवान के भक्तों के भक्तों का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भगवान आदि पुराण में भी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुना जो व्यक्ति सीना तान के कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूं, कहते मेरा भक्त नहीं हो, जो कहता है कि हाँ मैं कृष्ण के भक्तों का भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं, कृष्ण कहते हाँ वो मेरा डिवोटी है, वो मेरा प्रिय है। तो इस प्रकार की भावना जब हम अपने हृदय में लाते हैं और भक्ति में जीवन में लगते हैं तो कृष्ण हमारे लिए सरल हो जाते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा, भक्तों की सेवा करने के बिना कैसे इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए एक भक्त का एक ये जीवन है कि उसे सर्वप्रथम जो महान आचार्य हैं प्रभुपाद जैसे हैं उनके चरणों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जब ऐसे भक्तों की हम सेवा करते हैं तो कृष्ण के हम प्रिय होने लगते हैं, कृष्ण की ओर हम सरलता से आकृष्ट हो जाते हैं। और यही इस संप्रदाय की खासियत है, रामानुजाचार्य संप्रदाय की, जहां वहां के गुरुजन भी ये सोचते हैं कि मैं जो शिष्यगण है वो भी क्या है, मुझसे बढ़कर है, वो मेरा उद्धार कर सकते हैं। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुपति गए, तिरुपति में भगवान बालाजी तिरुमला जो हिल है उसके ऊपर रहते हैं और तिरुपति टाउन नीचे है, तो भगवान बड़े पहाड़ के ऊपर है। तो श्रीरंगम से रामानुजाचार्य जब वहां तिरुपति पहुंचे तो उन्होंने सोचा अभी तो ऊपर चढ़ना होगा, लेकिन वो जो पहाड़ है वो तो साक्षात अनंत शेष है, कैसे मैं उनके ऊपर पांव दूं, जैसे गोवर्धन है, गोवर्धन कौन है, साक्षात कृष्ण है, तो उसके ऊपर पांव नहीं देते वैष्णवगण। तो उसी प्रकार से वहां भी उन्होंने सोचा कैसे मैं पांव दूं, तो वो ऊपर नहीं चढ़ना चाह रहे थे। वहां बालाजी की सेवा करने के लिए पहले से कई सारे भक्त वहां थे और उनमें सर्व प्रमुख एक महान सन्यासी डिवोटी थे जिनका नाम था शैलपूर्ण। तो वो महान भक्त जो यमुनाचार्य के शिष्य थे उन्होंने सोचा ये रामानुजाचार्य नीचे इतने बड़े भक्त आए हैं उनका स्वागत करने के लिए जाना चाहिए मुझे, और वो अपने हाथ में माला और प्रसाद लेकर उस बड़े पहाड़ से उतरते हुए दौड़ते हुए नीचे गए। जब रामानुजाचार्य वहां खड़े थे, रामानुजाचार्य ने देखा ये तो मेरे गुरु के समान है, इतने उनके लिए उन्नत भक्त थे वो। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि ये मेरा स्वागत करने के लिए आए हैं, मैं तो उनके सामने नगण्य हूं, तुच्छ हूं, नीच हूं। और उन्होंने कहा कि हे शैलपूर्ण, आपको कोई नया भक्त नहीं मिला मेरा स्वागत करने के लिए, आप स्वयं चलकर आए हो वहां से? उन्होंने कहा मैंने पूरे स्थान में देख लिया, मुझसे ज्यादा नया भक्त मुझे कोई और नहीं मिला, हर भक्त मुझसे क्या था, उन्नत था। तो इस प्रकार से उस संप्रदाय में ये भावना है कि जो भक्त है हमेशा अपने से दूसरे भक्तों को उन्नत भावना से देखता है, और वही भाव श्रील प्रभुपाद ने अपने बुक श्रीमद् भागवतम के हाँ चतुर्थ स्कंद में प्रकट किया है। प्रभुपाद जब ध्रुव महाराज का चरित्र लिख रहे थे तो जब वह भागवतम में ध्रुव महाराज का वर्णन आता है कि जहां ध्रुव महाराज को लेने के लिए वैकुंठ से विष्णुदूत आते हैं और विमान पर उनको ले जाते हैं, तो ध्रुव महाराज ने सोचा कि मैं तो वैकुंठ जा रहा हूं, विष्णुदूत मुझे ले जा रहे हैं, मेरी माता भी जा रही है कि नहीं जा रही है, ऐसा वो सोच ही रहे थे। विष्णुदूतों ने कहा कि साइड में देखो, दूसरे विमान में कौन जा रही है? तुम्हारी माता जा रही है। क्यों जा रहे थे? इतने बड़े भक्त होते हैं ध्रुवा, और दूसरा ध्रुव महाराज को कृष्ण प्राप्ति में उनकी माता ने असिस्ट किया था, थोड़ी सी सेवा की थी। क्या सेवा की थी? ध्रुव महाराज जब उत्तानपाद के गोद में उनको बैठना था, उनकी जो सौतेली माँ है जिसका नाम क्या था? सुरुचि। उनके पिता जिसमें रुचि रखते हैं उसको क्या कहते हैं? सुरुचि। और जिसमें रुचि नहीं रखते उनको सुनीति कहा जाता है। तो ऐसे ध्रुव महाराज को उत्तानपाद के गोद से नीचे गिरा दिया और कहा कि तुम्हें अधिकार नहीं है उनके गोद में बैठने का, हाँ आपको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो ध्रुवा क्षत्रिय थे, रोते हुए खूंखार एक सर्प की तरह उनके माँ के पास जाते हैं, माँ को ये घटना बताते हैं और पूछते हैं मुझे बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे। उनकी माता ने तो थोड़ा बहुत सुना था। क्या सुना था? भगवान जब हम छोटे थे तो हमें भी वही लगता था कि भगवान कहाँ मिलते हैं, कहाँ जाने से मिलते हैं? जंगल में। आजकल तो मुश्किल है, जंगल ही में रहे। अभी कौन से जंगल है? कॉन्क्रीट जंगल है। जंगल में जहां प्राणी रहते हैं, पशु रहते हैं। तो ध्रुव ने जब पूछा कि कहां भगवान है, तो उनकी माता ने केवल यही कहा था कि जंगल में भगवान होते हैं, क्योंकि सारे वैष्णव भी साधुगण भी वहां निवास करते हैं। ध्रुव जाते हैं नारद की गाइडेंस में, भगवत भजन करते हैं और सिद्धि लाभ करते हैं। तो जब ये घटना वर्णन हो रही थी भागवत में, तो प्रभुपाद ने वहां एक लाइन लिखी तात्पर्य में। प्रभुपाद ने कहा जिस प्रकार से ध्रुव सक्षम है, अपनी माता को उन्होंने भगवत धाम ले गए, उसी प्रकार से कोई मेरा ये जितना मैंने प्रयास किया है, ये आंदोलन खड़ा करके ये सफल है, यदि कोई मेरा अनुयायी या शिष्य क्या करे, मुझे भगवान के धाम ले जाए। इतनी विनम्रता का भाव भक्त के हृदय में। तो वही भावना जो रामानुजाचार्य के संप्रदाय में है, वही भगवत भाव श्रीपाद जो प्रभुपाद हैं या हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं वो प्रकट करते हैं। इतना ही नहीं, प्रभुपाद के जो आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जैसे वो अपने शिष्य उनके सामने हुआ करते थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने दोनों हाथ जोड़कर क्या बोलते थे? दासोस्मि, कि मैं आपका सर्वंत हूं, मैं आपका दास हूं। तो इस प्रकार से ये जो श्रीपाद रामानुजाचार्य हैं, उनके कई सारी घटनाएं हैं जिन्होंने हजारों हजारों जीवों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया है। एक घटना का हम वर्णन करते हैं कि जब श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम में निवास कर रहे थे और वहां भगवान रंगनाथ है जो अनंत शेष पर लेटे हुए हैं चतुर्भुज विग्रह, तो भगवान जब पालकी में बाहर निकले थे, बहुत सारे ढोल नगाड़े और सब कुछ बज रहा था, भक्त लोग नाच रहे थे, श्लोकों का उच्चारण हो रहा था, पालकी जा रही थी, डिवोटीज गा रहे थे जोर जोर से। उस समय श्रीपद रामानुजाचार्य कावेरी में स्नान करके अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे और सामने प्रोसेशन जा रहा था पालकी का, तो उन्होंने अचंभित करने वाली एक घटना देखी, एक सीन उन्होंने देखा, एक दृश्य देखा। क्या देखा उन्होंने? कि हर कोई व्यक्ति भगवान का जो पालकी जा रहा है उनका दर्शन करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनके लिए कीर्तन करने के लिए, नाचने के लिए मग्न है, लेकिन उन्होंने देखा एक नौजवान जिसने अपने हाथ में अम्ब्रेला छाता पकड़ा हुआ है और एक सुंदर युवती जा रही है, उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, दोपहर का समय था धूप का, और एक हाथ में क्या है, चामल पंखा, एक हाथ में पंखा रखा हुआ है फैन, और उस युवती के सर के ऊपर अम्ब्रेला पकड़ा है छाता, और फैन एक हाथ में पकड़ा है, और उसकी आंखों में देखते हुए जा रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहां भगवान जा रहे हैं, आ रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, उन्हीं के साथ जा रहा है, पालकी के साथ जा रहा है, लेकिन एक विशेष इसका ये आकर्षण था। तो रामानुजाचार्य ने देखा, अरे सारे लोग भगवान के लिए नाच रहे गा रहे हैं, ये अकेले क्या ऐसी दशा क्यों? उन्होंने अपने शिष्य को कहा, हरि बोल प्रभु जी जाइए, वो दूसरे प्रभु जी बहुत मग्न है, उनको जरा देख के आइए। तो ये दौड़ दिया और उनका शिष्य गया, उन्होंने कहा हरि बोल, तो बिल्कुल मग्न है, चाहे जितना जोर से ये चिल्लाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, दो बार तीन बार बोला जोर से तो वो हल्के से देखता है, कहते बताइए क्या कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि सन्यासियों में जो सर्वश्रेष्ठ है श्रीपद रामानुजाचार्य आपको बुला रहे हैं। तो जब ये व्यक्ति ने कहा रे रामानुजाचार्य बुला रहे हैं, तो ये व्यक्ति ने अपना अम्ब्रेला बंद किया, छाता क्या किया बंद किया, दौड़ते हुए उनके पास गया, उन्होंने कहा बताइए। उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं भगवान वहां जा रहे हैं, उनके लिए तुम नाच रहे हो गा रहे हो, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा, उन्होंने पहले पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम धनुर्दास है, दास तो हर कोई है कि नहीं, मेरा नाम धनुर्दास है। तो उन्होंने कहा आप क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा मैं अपने जीवन में सबसे सुंदर आंखों की तलाश में था, क्या ढूंढ रहा था, सबसे सुंदर आंखें मैं अपने गांव से लेकर शहर तक ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते मुझे इस सिटी श्रीरंगम में इस युवती की जो सबसे सुंदर आंखें मुझे मिली है उनको मैं छोड़ नहीं सकता, उन आंखों को देखना चाहता हूं निरंतर। रामानुजा को दया आ गई, जो महान वैष्णव है उनके हृदय में दया उमड़ पड़ती है बद्धजीवों की ऐसी स्थिति को देखकर। तो रामानुजाचार्य ने कहा हे धनुर्दास मैं तुम्हें इससे भी सुंदर आंखें दिखाऊं, तो तुम देखने के लिए तैयार हो? तो क्या कहा होगा उसने? उसने कहा हाँ, यदि आप मुझे इससे भी सुंदर आंखें दिखाने के लिए तैयार हो तब मैं तत्पर हूं उनको देखने के लिए। हाँ, तो रामानुजाचार्य ने कहा कल सुबह आ जाओ हाँ मेरे आश्रम में। तो धनुर्दास फिर से गया, अपना अम्ब्रेला खोला पालकी के साथ आइस को देखते हुए, और फिर दूसरे दिन वो आया, रामानुजाचार्य ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते हुए उनको ले गए, सात जो दीवारें हैं श्रीरंगम टेम्पल की उनको क्रॉस करते हुए है फाइनली मेन जो अल्टर है भगवान का, जहां रंगनाथ है, उनके सामने ले गए और उनको कहा अभी देखो यहां। तो उस व्यक्ति धनुर्दास ने जब देखा भगवान को, भगवान की इतनी सुंदर आंखें हैं, भगवान को क्या कहा जाता है, कमल नयन, क्या कहते हैं, कमल नयन, जिनकी आंखें कमल के समान पंखुड़ी के समान लंबी है, तो कमल नयन आंखों को जैसे उस धनुर्दास ने देखा, उनको देखने मात्र से भगवान की आंखों को ये रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, वहां गिरकर वो प्रार्थना करने लगा कि किस प्रकार से मैंने अपना जीवन गवाया है, कि मुझे पहले से ही पता चलता कि इतनी सुंदर आंखें इस संसार में है भगवान की, क्यों नहीं भगवान के सौंदर्य को मैं निरंतर देखता। तो फिर रामानुजाचार्य की शरण ग्रहण करता है, रामानुजाचार्य उसको दीक्षा प्रदान करते हैं हाँ, और वो भगवान के भक्त बनते हैं। तो जिस युवती की वो आंखें देख रहे थे उनका नाम था हेमांत, फिर उन दोनों का विवाह किया जाता है, और वो इतने महान भक्त बनते दोनों, इतने समर्पित कि जो रामानुजाचार्य के आश्रम में रहने वाले सन्यासी ब्रह्मचारी ब्राह्मण वो उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं कि ये पति पत्नी इतनी सेवा करते हैं, हमारे गुरु मतलब रामानुजाचार्य जब कावेरी में स्नान करते थे, स्नान करके जब चलते थे टेंपल की ओर, तो अपना हाथ उनके धनुर्दास के कंधे में डालकर चलते थे। तो ये मंदिर के भक्तों को बड़ा परेशानी हो गई, उनको लगा ये क्या है, जलन हो गई इनको, लगा हम ही बहुत बड़े सेवक हैं। तो एक दिन रामानुजाचार्य ने देखा कि ये उचित नहीं है, तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, जितने भी उनके आश्रम में रहने वाले सन्यासी ब्रह्मचारी आदि थे, रात्रि के समय में सबके कपड़े लिए, इसका कपड़ा उसके जगह पर, उसके कपड़े उसके जगह पर रख दिए और फाड़े। सुबह सब जब उठे तो आपस में इतने लड़ाई झगड़ा हो गया, पूरे आश्रम में हाहाकार मच गया। और फिर रामानुजाचार्य ने एक भक्त को कहा कि जाओ उस धनुर्दास के घर में जाओ, और घर में जाकर क्या करो, चोरी करो। क्या करो? तो जब ये मंदिर का एक भक्त गए, दो तीन ब्रह्मचारी मिलके, तो ये धनुर्दास और धनुर्दास तो बाहर चले गए थे, उनकी पत्नी सो रही थी। जैसे ये खिड़की से अंदर गए भक्त लोग, घर में जो भी धन वगैरह था बैग में डालने लगे, देखा कि उनकी पत्नी सो रही है, तो एक और जितने भी आभूषण थे, कान में, नाक में, बाजूबंद, हाथ में, पांव में, एक और के वो भक्त लोग निकालने लगे। और उस माताजी हेमा, उन्होंने सोचा अरे मंदिर में शायद धन की कमी हो गई है कृष्ण की सेवा के लिए, इसलिए भक्तों को क्या करना पड़ रहा है आजकल, कॉन्ग्रेगेशन के घर में जाकर चोरी करनी पड़ रही है। तो उस हेमा को लगा कि नहीं, मैं क्या करती हूँ, करवट बदलती हूँ ताकि दूसरे साइड के भी ले जाए। तो वो हिल गई ऐसे करवट बदलने के लिए, तो इनको लगा अरे तो चल गई, भागो यहां से, और वो भाग गए। तो फिर एक दिन रामानुजाचार्य वो आ गए मंदिर, और रामानुजाचार्य ने कहा अभी जाओ घर में जाओ, उनके पति धनुर्दास पहुंच गए होंगे, और खिड़की में जाकर सुनो वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो जब वो धनुर्दास घर आए थे, ये भक्त लोग खिड़की से सुन रहे थे, तो धनुर्दास पति अपने पत्नी को कहते हैं, वो पत्नी आते ही बताने लगे कि ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने कहा फिर तुमने बाकी ज्वेलरी क्यों नहीं दी। हाँ, तुम उसको डांटने लगे कि सारी जो ये संपदा है, हमारा अस्तित्व है, वो कृष्ण और गुरु की सेवा के लिए है। हाँ, इतना बड़ा समर्पण था। तो जब रामानुजाचार्य ने सुना तो उन्होंने कहा वास्तव में ये जो दोनों डिवोटीज हैं, उनका जो समर्पण है वो सबसे क्या है, सर्वोत्तम है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से ऐसे श्रीपद रामानुजाचार्य जिनको कहा जाता है, एक प्रकार से टच स्टोन है, जिनके भी कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है तो वो कृष्ण का महान भक्त बन जाता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उस संप्रदाय से दो प्रमुख शिक्षाओं को ग्रहण किया था। एक क्या था, अनन्य भावना से भगवान की सेवा करना या भक्ति करना, और दूसरा था क्या था, दूसरा भक्त जन सेवा। तो जब ये दो चीजें हम अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि भगवान की ओर जाने की जो तीव्रता है वो बहुत अधिक तेज हो जाएगी। भगवान की जो कृपा है वो हम सरलता से अनुकूल कर पाएंगे। तो इसी कारण से ये भक्तों का जीवन है, तो भक्तिमय जीवन में इन भक्तों का चरित्र हमें सुनना चाहिए। उनके बारे में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें भक्ति करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रभुपाद का जीवन देखो इन दो चीजों में है, उन्होंने कुछ और नहीं सोचा, अपने आयु आदि का किसी का भी ध्यान नहीं रखा। अब प्रभुपाद इसलिए अमेरिका नहीं गए 40 साल 70 साल की आयु में, 40 रुपए उनके पास थे कि जाकर क्या होगा, उनका नाम आदि बहुत फैलेगा, नहीं, वो केवल यही चाहते थे कृष्ण की सेवा करना, चाहे उनको कितना ही कष्ट उठाना क्यों ना पड़े। अमेरिका गए ना उनके लिए वहां खाने की व्यवस्था थी, ना कोई उनको कुकिंग करके देने वाला था, अब बीमार पड़ भी जाए तो उनको कोई देखने वाला भी नहीं था। ऐसी कठिन ऐसा कठिन संघर्ष को झेलते हुए वो वहां रहे, केवल अनन्य भावना से कृष्ण की सेवा की। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है, भक्त जन सेवा, क्योंकि उनके जो गुरु हैं वो कृष्ण के महान भक्त थे और उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा थी। हाँ, तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए भक्तों की सेवा कैसे की जा सकती है, दो प्रकार से। एक है उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके वाणी की सेवा करना, जिसके द्वारा हम उनको बेटर वे में अच्छी तरह से सर्व कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक गुरु की जो वाणी सेवा है, वपु सेवा, शारीरिक सेवा से भी अत्यधिक उत्कृष्ट क्या है, उनकी जो वाणी है, आदेश है, उनकी सेवा करना। तो प्रभुपाद ने वो सेवा की जिसके द्वारा वास्तव में वो सारे जगत के और कृष्ण के भी प्रिय बन गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद रामानुजाचार्य की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।